नमस्ते दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ हिंदी भाग 8 के एक चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है भाषा वर्गीकरण एवं संसार की भाषा परिवार। पहली हेडलाइन है भाषाओं का वर्गीकरण। विश्व के अनेक जातियों की भांति अनेक भाषाएं भी हैं। अन्य विषयों की भांति ही हमारे मन में संसार की भाषाओं के ज्ञान, उनके परस्पर संबंध एवं संख्या आदि के विषय में अनेक प्रश्न उभरते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें भाषाओं के वर्गीकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। वर्गीकरण द्वारा हमें भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की पुष्ट सुविधा भी प्राप्त होती है। यद्यपि संसार की समस्त जीवित भाषाओं का आज तक न तो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हो पाया है और न ही उनकी संख्या का सही अनुमान। आज भी अनेक भाषाएं भाषा वैज्ञानिकों की पहुँच के बाहर हैं। तुलनात्मक पद्धति के विवेचन में यह बताया जा चुका है कि इस पद्धति में एक से अधिक भाषाओं की तुलना द्वारा यह ज्ञात होता है कि कौन सी भाषाएं एक दूसरे से समान हैं तथा कौन सी भिन्न। इस ज्ञान के आधार पर समानता के तत्व से युक्त भाषाएं एक वर्ग अथवा समूह में रखी जाती हैं। समानता के आधार पर भाषाओं को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्रणाली को भाषाओं का वर्गीकरण कहा जाता है। दूसरी हेडलाइन है वर्गीकरण का आधार। धर्म, जाति, देश, महाद्वीप आदि के आधार पर भाषा के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास हुआ, पर यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं थे। अंततः भाषा की प्रकृति की समानता असमानता को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। भाषाओं में मिलने वाली समानताएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली समानता बाह्य संरचनात्मक होती है एवं दूसरी आंतरिक अथवा प्रकृति प्रधान। जब भाषाओं को उनकी आकृति अर्थात बाह्य समानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है तब उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं, और जब भाषाओं को उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है तब इस प्रकार के वर्गीकरण को पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहा जाता है। भाषाओं में आंतरिक समानता से युक्त भाषा को एक ही परिवार का माना जाता है, इस प्रकार के वर्गीकरण को पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार उन भाषाओं को ही एक वर्ग में रखा जाता है जिन भाषाओं में ऐतिहासिक संबंध रहता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। कतिपय भाषा वैज्ञानिक देश भारतीय, रूसी, जापानी भाषाएं, धर्म हिंदू, ईसाई, मुसलमानी भाषाएं, महाद्वीप, यूरोपीय, एशियाई, अमेरिकी, अफ्रीकी भाषाएं, काल या युग, प्राचीन कालीन, प्रागैतिहासिक युगीन, मध्ययुगीन भाषाएं आदि को आधार बनाकर भी भाषाओं का वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं, किंतु ऐसे वर्गीकरणों में भाषा की विशेषताओं का कोई बोध नहीं होता। यही नहीं, एक देश की भाषा दूसरे देश में भी प्रयुक्त हो सकती है। एक धर्म की भाषा का व्यवहार दूसरे धर्म के लोग भी कर सकते हैं। यही स्थिति महाद्वीप की भी है। एक महाद्वीप में एक से अधिक भाषाओं का व्यवहार हो सकता है। एक भौगोलिक परिक्षेत्र में दूसरे परिक्षेत्र की भाषा भी बोली जा सकती है। इस आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण न तो व्यवहारिक है और न ही वैज्ञानिक, अतः इस प्रकार के वर्गीकरण की उपयोगिता बहुत कम है। बाह्य एवं रचनागत समानता के आधार पर जिन भाषाओं को एक समूह या वर्ग में रखा जाता है उनके मध्य कोई नाता रिश्ता नहीं होता। साथ ही रचनागत समानताएं कभी नव निर्मित होती हैं, कभी लुप्त। यह भाषा की प्रकृति है। उदाहरण के लिए आज की जो योगात्मक भाषाएं कल अयोगात्मक हो सकती हैं तथा कल की अयोगात्मक भाषाएं भविष्य में योगात्मकता की ओर उन्मुख हो सकती हैं। योगात्मक संस्कृत से विकसित हिंदी में अयोगात्मकता के अनेक तत्व दिखाई देने लगे हैं। हिंदी निरंतर अयोगात्मकता की ओर बढ़ रही है, इस कारण आकृतिमूलक वर्गीकरण भी आज महत्वहीन हो रहा है। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य भाषाओं के परस्पर संबंध की जानकारी प्राप्त करना है। यदि कोई वर्गीकरण हमारे इस उद्देश्य की सिद्धि में सहायक नहीं हो पा रहा है तो उसकी उपयोगिता घट जाती है। संसार की भाषाओं के वर्गीकरण में सहायक प्रमुख दो वर्गीकरणों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला आकृतिमूलक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण को रूपांतमक, रचनात्मक या पदात्मक भी कहा जाता है। आकृति एवं रूप भाषा के ही स्वरूप है, अर्थात एक दूसरे के पर्याय हैं। रचना आकृति या रूप की निष्पत्ति प्रक्रिया की व्याख्या है। पदात्मक का संबंध रचना से ही है। इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए शब्द एवं पद की रचना प्रकृति का स्पष्टीकरण आवश्यक है। शब्द की निष्पत्ति के लिए दो तत्व अर्थ तत्व प्रकृति एवं रचना तत्व प्रत्यय प्रत्यय आवश्यक हैं। कभी कभी एक तीसरे तत्व उपसर्ग काफी प्रयोग किया जाता है। प्रकृति मूल तत्व है जो अर्थ का आधार है, प्रत्यय इसके व्यापार को स्पष्ट करने वाला अंश है तथा उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय के युग से उत्पन्न शब्दार्थ का द्योतक या रूपांतरक है। अतः अधिकतर शब्दों को निष्पत्ति में इन तीनों की उपस्थिति अपरिहार्य होती है। उपसर्ग प्लस प्रकृति प्लस प्रत्यय बराबर शब्द, द्योतक प्लस अर्धतत्व प्लस व्यापार बराबर रचना तत्व। उदाहरण बी व में छोटी प्लस ह प्लस घ या इक्वल टू बिहार, सम प्लस ह प्लस घ बराबर संहार, उप प्लस ह प्लस घल बराबर उपहार। उपर्युक्त उदाहरण द्वारा उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय का अंतर तथा संयोग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उपसर्ग के भेद द्वारा शब्दों के अर्थों में कैसे अंतर आ जाता है इसे प्रस्तुत उदाहरण द्वारा देखा जा सकता है। प्रचार संचार विचार आचार उपचार, प्रहार संहार विहार आहार उपहार। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि एक ही शब्द चार या हार भिन्न भिन्न उपसर्ग के संयोग से भिन्न अर्थ देने लगते हैं। इसी कारण उपसर्ग को अर्थ का द्योतक कहते हैं, अर्थात शब्द में निहित अर्थों को वह प्रकाशित कर देता है। व्याकरणों की यह मान्यता है कि उपर्युक्त अर्थ चार या हार में ही विद्यमान है किंतु दिखाई नहीं पड़ते। प्र सम वि आ उप आदि उपसर्गों से वे द्योतित या प्रकाशित हो जाते हैं। उपसर्ग सर्वत्र रहे यह अनिवार्य नहीं, बहुत सारे शब्द उपसर्ग के बिना भी रहते हैं, जैसे सुंदर मंजुल आदि विशेषण या यमन तरुणी आदि संज्ञाएं। इसे और स्पष्ट ढंग से यूँ कह सकते हैं कि उपसर्गों का प्रयोग उन शब्दों के साथ होता है जो धातु से बनते हैं, अर्थात उपसर्ग मुख्यतः कृदंत में लगते हैं तद्धित में नहीं। प्रयोग के लिए शब्द की निष्पत्ति ही पर्याप्त नहीं, शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करने के लिए उसमें और कुछ जोड़ना पड़ता है। इसे संबंध तत्व या रूप तत्व कहते हैं। विभक्ति का अर्थ है विभाजन, जिससे शब्द के अर्थ का विभाजन हो जाए, अर्थात यह मालूम हो जाए कि शब्द का कौन सा अर्थ अभिप्रेत है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित तीन शब्दों को लीजिए, वह कार्यालय जाना। ये सभी शब्द हिंदी भाषा भाषी के लिए सुपरिचित है किंतु उनसे वक्ता का कथ्य स्पष्ट नहीं हो पाता। यही नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वक्ता पुरुष है या स्त्री, एक है या अनेक, वर्तमान काल है भविष्य या भूतकाल, जाना कार्यालय में है या कार्यालय से जाना। इस तरह विभक्ति विहीन होने से सुपरिचित शब्द भी अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। संबद्ध तत्व के कारण के लग जाने पर अर्थ विभक्त हो जाता है और उससे अस्पष्टता भी आ जाती है, जैसे वह कार्यालय जाता है, ता है वर्तमान काल, एक वचन पुलिंग का बोधक है। वह कार्यालय जाती है, ती है वर्तमान काल, एक वचन स्त्रीलिंग का बोधक है। वह कार्यालय जाता था, ता था भूतकाल, एक वचन पुलिंग का बोधक है। वह कार्यालय जाती थी, ती थी भूतकाल, एक वचन स्त्रीलिंग का बोधक है। वह कार्यालय जाएगा, एगा भविष्यत काल, एक वचन पुलिंग का बोधक है। वह कार्यालय जाएगी, एगी भविष्यत काल, एक वचन स्त्रीलिंग का बोधक है। संबद्ध तत्व ही विहीन शब्द परिचित होते हुए भी कभी कभी अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट ढंग से समझा जा सकता है। राम मोहन मारना, यहाँ तीनों शब्द अर्थ तत्व हैं, फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि राम ने मोहन को मारा या मोहन ने राम को मारा। इन्हीं शब्दों को संबद्ध तत्व युक्त कर दिया जाए तो अर्थ प्रकाशित हो जाता है। राम ने मोहन को मारा, इस वाक्य में ने को तथा मारा का आ संबंध तत्व है। ये संबंध तत्व क्रमशः कर्ता कर्म क्रिया तथा काल आदि के सूचक है तथा पदों के परस्पर संबंध के द्योतक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विभक्तिहीन एवं विभक्ति युक्त। विभक्तिहीन शब्द शब्द कहलाता है और विभक्ति युक्त शब्द पद। वाक्य में प्रयोग शब्द का नहीं पद का होता है, वस्तुतः बिना पद के वाक्य बन ही नहीं सकते। प्रत्यय और विभक्ति के अर्थ में बहुत बार भ्रम देखा जाता है। कतिपय लोग एक के लिए दूसरे का प्रयोग करते हैं। प्रत्यय का प्रयोग शब्द की निष्पत्ति के लिए होता है और विभक्ति का पद की निष्पत्ति के लिए। इससे दूसरे शब्दों में यू कह सकते हैं कि शब्द के लिए प्रत्यय आवश्यक है जबकि वाक्य के लिए विभक्ति। जब तक विभक्तियां नहीं लगेंगी तब तक शब्दों का परस्पर अन्वय नहीं होगा और अन्वय न होने पर वाक्य की संरचना संभव नहीं। संसार की कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनके प्रकृति के साथ न तो प्रत्यय का योग होता है और न विभक्तियां जुड़ती हैं, न अन्य किसी संबंध तत्व का प्रयोग होता है और न वे समास बहुल हैं, अपितु अविकारी एवं अव्यय जैसे शब्दों से निर्मित है जिन्हें अयोग्यात्मक भाषाएं कह सकते हैं। इसके विपरीत संसार की कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनके वाक्यों का निर्माण या तो समास बहुल शब्दों से होता है या प्रत्यय के योग से निर्मित शब्दों से होता है। ये भाषाएं योगात्मक भाषाएं कहलाती हैं। इस दृष्टि से यदि भाषाओं का वर्गीकरण किया जाए तो दो भेद हमारे सामने उभर कर आते हैं, पहली अयोगात्मक भाषाएँ, दूसरी योगात्मक भाषाएँ। योगात्मक भाषाओं में से कुछ ऐसी भाषाएं हैं मिलती हैं जिनके शब्दों में प्रकृति तथा प्रत्यय का योग रहता है, किंतु वे प्रत्यय अपनी प्रकृति के मूल पूर्ण रूप से घुल मिल नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हें अश्लिष्ट योगात्मक या प्रत्यय प्रधान भाषाएं भी कहा जाता है। योगात्मक भाषाओं में कुछ ऐसी भाषाएँ भी मिलती हैं जो प्रश्लिष्ट होती हैं। इनमें प्रकृति अर्थ तत्व और प्रत्यय संबंध तत्व इस प्रकार एक दूसरे से चिपके रहते हैं कि उनको एक दूसरे से पृथक करना सर्वथा कठिन होता है। इन भाषाओं को इसलिए प्रश्लिष्ट, युगात्मक या समास प्रधान आदि नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन भाषाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी भाषाएं मिलती हैं जिनके वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के अंतर्गत प्रकृति या विभक्ति का संयोग मिलता है और ये विभक्तियाँ अपनी प्रकृति में ऐसी मिली रहती हैं कि इनकी सत्ता तो स्वतंत्र दिखाई देती रहती है, किंतु इन विभक्तियों या संबंध तत्वों को अलग करना कठिन प्रतीत होता है। ऐसी भाषाओं को संलिष्ट योगात्मक या विभक्ति प्रधान भाषाओं के नाम से संबोधित किया जाता है। डॉक्टर पी डी गुड़े, डॉक्टर तारा पोरवाला तथा अन्य अनेक आधुनिक भारतीय भाषा वैज्ञानिकों के ग्रंथों में थोड़े बहुत अंतर के साथ भाषाओं का जो आकृतिमूलक वर्गीकरण मिलता है उसको निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है। भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा जाता है, पहला अयोगात्मक भाषाएं, दूसरा योगात्मक भाषाएं। अयोगात्मक भाषाएं हैं चीनी, वर्मी, तिब्बती, स्यामी, अनामी, सुडानी। उसके पश्चात योगात्मक भाषाओं को भी तीन भागों में बांटा जाता है, पहली है असंलिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाएं जैसे बातु, यूराल, अल्ताई, द्रविड़, मुंडा परिवार की भाषाएं। दूसरा है श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषाएं जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता। तीसरा भाग है प्रसंलिष्ट या समास प्रधान भाषाएं जैसे चेरोकी, एस्किमो, बास्क। अब हम आते हैं अयोगात्मक भाषाओं पर। हेडिंग है अयोगात्मक भाषाएं। अयोगात्मक को एकाक्षर या निर्वय व भी कहते हैं क्योंकि इस वर्ग की प्रमुख भाषा चीनी के शब्द एक अक्षर के होते हैं। अयोगात्मकता से तात्पर्य है युग विहीन, युग अर्थात रचना तत्व विहीन। हम पहले बता चुके हैं कि विभक्ति ही वाक्य में शब्दों का अर्थ प्रकाशित करती है। यदि इन भाषाओं में विभक्ति विहीन शब्दों का पदों का प्रयोग होता है तो प्रश्न उठता है कि इसका अर्थ किस प्रकार द्योतिक होता है। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि इस प्रकार की भाषाओं के वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कर्म, क्रिया आदि का स्थान नियत रहता है। उस स्थान विशेष पर प्रयुक्त होकर कोई भी शब्द संज्ञा, क्रिया या विशेषण का अर्थ दे देता है। यहाँ दो बात स्पष्ट हो गई, पहली इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज नहीं होती और न शब्दों का रूप बदलता है। प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है, वास्तव में प्रयुक्त होने पर वह सत्ता ज्यों की त्यों बरकरार रहती है। इस वर्ग की भाषाओं में शब्दों का व्याकरणिक विभाजन नहीं होता, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि कोटियां नहीं होती। एक ही शब्द वाक्य में स्थान भेद से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कुछ भी हो सकता है, अर्थात इस भाषा में स्थान का महत्व अधिक होता है। हिंदी के निम्नलिखित उदाहरण द्वारा हम इस स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। सांप मेढक खाता है, मेढक सांप खाता है, इन दोनों वाक्यों के शब्दों में कोई अंतर नहीं है, केवल स्थान बदल दिया गया है। पहले वाक्य में सांप करता मेढक कर्म है, किंतु दूसरे वाक्य में केवल स्थान बदल जाने से ही मेढक करता और सांप कर्म हो गया। कर्ता एवं कर्म के भेद का कोई चिन्ह शब्दों के साथ लगा नहीं है, इसलिए स्थान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अर्थ भी बदल गया है। किंतु संस्कृत में इस संदेह का अवकाश नहीं रहता, क्योंकि उसमें विभक्तियां पदों के साथ स्पष्टतः दिखाई पड़ती हैं, और पदों को उलट पुलट दें तब भी वह अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। सर्पः दुर्दरं खादति, दुर्दरं सर्पः खादति, खादति सर्पः दुर्दरं। स्थान भेद हो जाने से पद के व्यापार में कोई अंतर नहीं आता। कर्ता कहीं भी रहकर कर्ता ही रहता है, और कर्म भी कर्म ही। वाक्य विन्यास की यह स्वाधीनता और सुविधा अयोगात्मक भाषाओं में नहीं रहती। वहां शब्द का क्रम बदला नहीं कि अर्थ बदल जाता है। स्वर के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता है, इसलिए स्वर भेद से एक ही शब्द अनेक अर्थों का वाचक हो जाता है। कहीं कहीं निपात से भी शब्द या वाक्य की रचना तथा अर्थ परिवर्तन में सहायता ली जाती है। चिन्ह ईश्वर की प्रतिनिधि भाषा है। अयोगात्मक भाषाओं को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला स्थान के आधार पर अर्ध द्योतक भाषा है, दूसरा निपात के आधार पर अर्ध द्योतक भाषा है, तीसरा सुर के आधार पर अर्ध द्योतक भाषा है। अब हम पहले भाग पे आते हैं, यानी स्थान के आधार पर अर्ध द्योतक भाषा है। इस वर्ग की प्रमुख भाषा चीनी है। चीनी भाषा के निम्नलिखित तीन शब्दों को लीजिए। शब्द नगो अर्थ मैं, शब्द नी अर्थ तू, शब्द ता अर्थ मारना। यदि इन्हें इस क्रम में रखा जाए, नगो तानी तो अर्थ होगा मैं मारता हूँ तुम्हें, कोष्ठ में मैं तुम्हें मारता हूँ। किंतु इसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का स्थान बदला जाए तो अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए नी ता नगो। इस स्थिति में अर्थ होगा तू मुझे मारता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लिया जा सकता है, ता लेन बड़ा आदमी है, किंतु लेन ता आदमी बड़ा है। एक और वाक्य लें, ता कुओक बड़ा राज्य, किंतु कुओक ता राज्य बड़ा है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रथम वाक्य में यदि नुगो क्रिया ता से पहले आई है तो वह कर्ता हो गया है, और नी क्रिया के पश्चात आने के कारण कर्म हो गया है, जबकि दूसरे वाक्य में नी क्रिया ता से पूर्व आने के कारण कर्ता हो गया है, और नुगो शब्द का अर्थ क्रिया के बाद में आने के कारण कर्म हो गया है। वाक्य में स्थान के अनुसार शब्दों का अर्थ लगा लेने के कारण इन भाषाओं को स्थान प्रधान भी कहते हैं। अपवाद रूप में हिंदी में भी इस प्रवृत्ति के उदाहरण देखने को मिलते हैं, यथा शेर बकरा खाता है, बकरा शेर खाता है। यहाँ दोनों वाक्यों में शेर का अलग अलग अर्थ है। पहले में शेर कर्ता का बोधक है और दूसरे में कर्म, और स्थान परिवर्तन कारण दूसरे वाक्य में बकरा कर्ता हो गया है जबकि पहले वाक्य में कर्म था। इसी प्रकार के औरों भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जो इसी अपवाद की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह सुंदर कलम है और मैं कलम से लिखता हूँ आदि। दूसरी हेडलाइन है, निपात के आधार पर अर्थ द्योतक भाषाएं। चू का अर्थ है भावबोधक अर्थात च, भाववाचक निपात है चू बराबर ता। इसे ही हिंदी ता स्व आदि प्रत्ययों द्वारा व्यक्त किया जाता है। निपात का एक उदाहरण निम्नलिखित वाक्यों में देखिए, वांग कोष्ठ में राजा, पाओ कोष्ठ में रक्षा करना, मीन कोष्ठ में जनता। इसका अर्थ होगा राजा जनता की रक्षा करता है, किंतु इस वाक्य में वाघ के बाद छी निपात का प्रयोग करने पर वाघ छी पाओ मिन राजा द्वारा रक्षित जनता। इन भाषाओं में निपात के दो कार्य हैं, पहला शब्दों के अर्थों में परिवर्तन करना तथा दूसरा शब्दों के अर्थों की सूक्ष्मता प्रकट करना। इस वर्ग में बर्मी तिब्बती भाषाएं आती हैं। तीसरा भाग है सुर के आधार पर अर्थ द्योतक भाषाएं। संस्कृत के पाठक एवं श्रोता उदात अनुदात तथा स्वरित स्वरों से परिचित हैं, इसे ही यहाँ सुर कहा गया है। तात्पर्य यह है कि पदों का उच्चारण करते समय उसमें प्रयुक्त किसी शब्द स्वर को उदात अनुदात की भांति ही उच्चरित करना। और युगात्मक भाषाओं में सुर के प्रयोग से अर्थों में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। माँ छोटाऊ मू के कई अर्थ हैं, माता जंगल आदि। वक्ता के स्वर के आरोह अवरोह से यह प्रकट होता है कि मू का कौन सा अर्थ अभिष्ट है। इसी प्रकार येन का अर्थ सुर भेद से कई हो जाता है, हंस धुआं नमक एवं आंख। क्वेई शब्द में ई स्वर का उच्चारण यदि उदात हो तो इसका अर्थ होगा दुष्ट, किंतु ई का उच्चारण अनुदात होने पर अर्थ होगा सामान्य। स्वर में भूल हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जा सकता है। चीनी में सुर का प्रयोग शब्द में भी होता है एवं वाक्य में भी। कहीं कहीं यह नितांत विरोधी अर्थ प्रकट करता है। इस वर्ग में चीनी तथा स्यामी भाषाएं आती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में स्थान निपात तथा सुर का बड़ा महत्व है। इन भाषाओं का व्याकरण इन्हीं का विवेचन करता है। इस वर्ग की विशेषताएं हैं इनका व्याकरण नहीं होता, पदक्रम का बहुत महत्व होता है। तीसरा, स्वर के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है, इसलिए स्वर भेद से एक ही शब्द अनेक अर्थों का वाचक हो जाता है। और चौथा, कहीं कहीं निपात से भी शब्द या वाक्य की रचना में सहायता ली जाती है। अब हम आते हैं दूसरे हेडलाइन, एक युगात्मक भाषाएं। जिन भाषाओं में अर्थ तत्व एवं संबद्ध तत्व में परस्पर युग रहता है उन्हें युगात्मक भाषाएं कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस वर्ग की भाषाओं में अर्थ तत्व एवं संबद्ध तत्व या रचना तत्व की युग से संबंध और शब्दों की निष्पत्ति होती है उन्हें युगात्मक भाषाएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ हिंदी वाक्य लें, जैसे पहला, शेर ने दहाड़ा। दूसरा, शत्रु ने ललकारा। तीसरा, मैंने शेर को मारा। चौथा, मैंने शत्रु को मारा। यहाँ पहले एक दूसरे वाक्य में संबंध तत्व ने अन्य दोनों पदों के अर्थों को स्पष्ट करने का कार्य करता है। तीसरे एवं चौथे वाक्य में संबंध तत्व ने संबंध तत्व ने अर्थ तत्व से ही जुड़ गया है तथा संबंध तत्व को अलग रखकर भी अपना कार्य कर रहा है। युगात्मक भाषाओं का सही रूप संस्कृत में देखने को मिलता है, जिसमें संबंध तत्व या रचना तत्व शब्द के साथ जुड़कर पदों के निर्मित करते हैं तथा पदों के अर्थ को विभाजन एवं एक दूसरे से संबंध अभिव्यक्त करते हैं। अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के स्पष्टीकरण के लिए संस्कृत का एक वाक्य देखें, राम हस्तेन धन ददाति। क्वेश्चन में, राम हाथ से धन देता है। इसमें राम अर्थ तत्व अह, संबंध तत्व हस्त, अर्थ तत्व एन, संबंध तत्व धन, अर्थ तत्व अम, संबंध तत्व तथा दा, अर्थ तत्व ती, संबंध तत्व मिले हैं। या इन अर्थ तत्वों और संबंध तत्वों में युग है। युगात्मक भाषाओं को युग की प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। पहला, अश्लिष्ट युगात्मक भाषाएं, दूसरा, श्लिष्ट युगात्मक भाषाएं और तीसरा, प्रश्लिष्ट युगात्मक भाषाएं।
अश्लिष्ट युगात्मक भाषाएं। अश्लिष्ट युगात्मक भाषाएं उन भाषाओं को कहते हैं जिनमें संबंध तत्व एवं अर्थ तत्व में कोई मेल मिलाप नहीं होता है। तात्पर्य यह कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व या रचनात्व का युग होने पर भी दोनों का अस्तित्व अलग अलग स्पष्ट झलकता है और वे प्रत्यय ही व्यापारकरणिक संबंध को सूचित किया करते हैं। यद्यपि ये प्रत्यय पूर्ण तो नहीं, फिर भी उनका महत्व किसी न किसी रूप में अवश्य दृष्टिगोचर होता है। एक उदाहरण दृष्टव्य है, मोहन ने ललकारा, श्याम ने मोहन को मारा। उपयुक्त वाक्य में मोहन के साथ वाक्य में न, ने और वाक्य में को संबंध तत्व जुड़ा हुआ है। संबंध तत्व जुड़ने के बावजूद प्रकृति तत्व मोहन एवं संबंध तत्व ने अथवा कोई स्पष्ट रूप से अलग दिखाई पड़ते हैं। साथ ही न तो मोहन और न ही ने अथवा को के रूप में या अर्थ तत्व में कोई परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। चूंकि अश्लिष्ट भाषाएं प्रायः रचनात्व होती हैं, इसलिए संबंध बताने के लिए अर्थ तत्व में प्रत्यय जोड़ना आवश्यक होता है। यह युग आदि, मध्य या अंत में कहीं भी हो सकता है। यदि रचनात्व अर्थ तत्व के पूर्व जोड़ा जाता है तो भाषाएं पूर्वयोगी तथा रचना तत्व यदि अर्थ तत्व के मध्य में जोड़ा जाता है तो भाषाएं मध्ययोगी और रचना तत्व तत्व आदि अर्थ में जोड़ा जाता है तो भाषाएं अत्यंत योगी कहलाती है। पूर्वांत में योग्य होने पर पूर्वंती योगी कहलाती है। कतिपय भाषाओं में पूर्व मध्य एवं अंत तीनों स्थानों पर प्रत्यय जुड़ते हैं, उन्हें सर्वयोगी कहते हैं। पूर्वयोगी जिन भाषाओं में रचना तत्व अर्थ तत्व के पूर्व जुड़ता है उन्हें पूर्वयोगी भाषा कहा जाता है। अफ्रीका की बाटू भाषा पूर्वयोगी भाषा का सर्व प्रमुख उदाहरण है। संस्कृति यद्यपि अश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत नहीं आती है तथापि उसमें भी पूर्वयोगी भाषा के गुण दिखाई पड़ते हैं, जैसे पठ पढ़ना और अपठत पढ़ा। यहाँ पठ धातु से अप्रत्यय लगाने से भूतकाल का अर्थ निकलता है। तात्पर्य यह कि संस्कृत में धातु के पूर्व प्रत्यय जोड़ने से भूतकाल का बोध होता है। बाटू परिवार की काफिर जुलू भाषाओं में पूर्व योग के उदाहरण मिलते हैं। काफिर भाषा में कु के लिए ती बराबर हम, नी बराबर उन, अतः कुती बराबर हमको या हमारे लिए, कुनी बराबर उनको या उनके लिए। जुलू भाषा में उलू एक वचन का चिन्ह अब बहुवचन का चिन्ह, ने तू बराबर मनुष्य। मध्ययोगी या मध्य योगात्मक भाषा के अंतर्गत भारत में बोली जाने वाली मुंडा परिवार की भाषाएं आती हैं। इनमें प्रायः शब्द दो अक्षरों के होते हैं और जैसा कि नाम अध्यय योगात्मक से ही स्पष्ट है, संबंधत्व दोनों अक्षरों के बीच में रखे या जोड़े जाते हैं। दल बराबर मारना, प बराबर बहुवचन का चिन्ह, दपल बराबर एक दूसरे को मारना। इसी तरह मंझी बराबर मुखिया, मंझपी बराबर मुखिए। हिंदी में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, यथा पढ़ना बराबर खुद पढ़ना, पढ़ाना बराबर दूसरों को पढ़ाना। पढ़ाना पढ़ना क्रिया का परिणार्थक रूप है। पढ़ाना के मध्य आया हुआ आ प्रत्यय ही क्रिया को प्रेरणार्थक बनाता है। तुर्की भाषा में भी इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, यथा सेव मेक बराबर प्यार करना, इन बराबर स्वयं का बोधक, सेव इन मेक बराबर अपने को प्यार करना, इल बराबर किया जाना, सेव इल मेक बराबर प्यार किया जाना। मध्य प्रत्यय संयोगी भाषाओं में अर्थ तत्व दो अक्षरों का होता है। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि बाटू तथा तुर्की के इन उदाहरणों में शब्द दो अक्षरों से अधिक के हैं, इसलिए ये पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिन शुद्धता दो अक्षरों के शब्दों में रहती है उतना उससे अधिक शब्दों में नहीं। मलय भाषा परिवार की टगलांग भाषा भी मध्य प्रत्यय संयोगी ही है। अंत्ययोगी या पर प्रत्यय प्रधान भाषाओं में संबंध तत्व केवल अंत में जोड़ा जाता है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण है। हिंदी में लिंग, वचन, कारक, काल आदि अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए अंत्यय प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। जैसे श्याम में ने अंत प्रत्यय जोड़ने श्याम ने रूप बनता है। यहाँ ने प्रत्यय से कर्ता का अर्थ ज्ञात होता है। लिंग, वचन, काल के अनुसार जाना क्रिया के अनेक रूप बनते हैं। जाना, जाता, जाते, जाती, जाती, जाएगी, जाएगा, गई आदि। इन रूप इन रूपों को निर्मित में रचनात्व मूल्य क्रिया के अंत में ही जुड़ा है। ता वर्तमान काल एक वचन पुलिंग का रूप है, ते वर्तमान काल बहुवचन पुलिंग का रूप है, ती वर्तमान काल एक वचन स्त्रीलिंग है, तो गा भविष्य काल एक वचन पुलिंग का बोधक है। परंतु हिंदी इस वर्ग की प्रमुख भाषा नहीं है। इस वर्ग की भाषाओं में यूराल, अल्ताई तथा द्रविड़ भाषा परिवार आते हैं। अल्ताई परिवार की तुर्की भाषा का एक उदाहरण देखें। एक बराबर एवं बराबर घर, लेर बराबर कई एवं लेर बराबर कई घर, ई बराबर मेरा, एवर एव लेर इम बराबर मेरे घर। हंगरी का एक उदाहरण लें। जार बराबर बंद करना, अत बराबर घोड़ा, लर बराबर बहु वचन बोधक प्लस ई बराबर को, अलरी बराबर घोड़े घोड़ों को, पूर्वांत योगी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस वर्ग की भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति के पहले तथा बाद में दोनों स्थानों पर लगता है। युगिनी को युगिनी की मफोर भाषा इसका उदाहरण है। मनफ मने सुनना, ज मने मैं, उ मने तुझे, ज प्लस बराबर मनफ प्लस उल बराबर मैं तुम्हें सुनता हूँ। सर्वयोगी, इसमें रचनात्व अर्थ तत्व के पूर्व मध्य या अंत में कहीं भी जुड़ता है। मलय भाषा की भाषाएं इसी की उदाहरण है। श्लिष्ट युगात्मक भाषाएं अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाओं में रचना तत्व अर्थ तत्व से जुड़कर ही अपना स्वतंत्र पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। साथ ही रचना तत्व के योग्य से अर्थ तत्व में कोई विकार भी नहीं होता है। अर्थ तत्व एवं रचना तत्व की यह स्पष्टता ही वहाँ अश्लिष्ट है जिसे रचना तत्व प्रधान कहा गया है। इसके विपरीत जब अर्थ तत्व से रचना तत्व इस प्रकार जुड़े कि अर्थ तत्व में कुछ परिवर्तन विकार हो जाए, परंतु दोनों अर्थ तत्व एवं रचना तत्व के भेद सर्वथा लुप्त न हो, उस स्थिति को श्लिष्ट कहा जाता है। अर्थात अर्थ तत्व एवं रचना तत्व को आसानी से पहचान लिया जाए। उदाहरण के लिए, नीति से नैतिक, मुनि से मौन, इतिहास से ऐतिहासिक, सुंदर से सौंदर्य, लवण से लवण्य, समाज से सामाजिक आदि। इन शब्दों में रचना तत्व प्रत्यय इक के योग्य के कारण अर्थ तत्व के परिवर्तन तो हो गया है, पर अर्थ तत्व एवं रचना तत्व को पहचानने में कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार अरबी का निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य है। अरबी में क त ब का अर्थ है लिखना। इस क त ब से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे किताब, कुतुब, कुतुबा, कातिब, मकतब, मकातिब, मकबूबात। एक मूल से निष्पन्न इन सभी शब्दों में परिवर्तन होने पर भी अंतर्वर्ती स्वरों का योग स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी प्रकार कतल से कत्ल, कातिल से कातिल शब्द से बने, इल्म से आलिम, इश्क से आशिक और मासूक आदि शब्द भी श्लिष्ट युगात्मक के ही उदाहरण है। भारूपीय तथा सामी परिवार की भाषाएं श्लिष्ट युगात्मक वर्ग में आती हैं। संस्कृत के अतिरिक्त ग्रीक, तालीन, अश्वेता, रूसी आदि की भी रचना प्रणाली एक जैसी है। संस्कृत के निम्नलिखित उदाहरणों में रचना तत्व का योग होने पर भी अर्थ तत्व स्पष्ट दिखाई देता है। राम रामः गच्छति, सीता गच्छति, राम गच्छति, सीता गच्छति, श्लिष्ट युगात्म युगात्म के भी दो भेद किए जाते हैं, बहिमुखी अंतर्मुखी। बहिमुखी श्लिष्ट उन भाषाओं को कहा जाता है जिनमें संबंध तत्व प्राय अंत में लगाए जाते हैं। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवस्था, हिंदी आदि को इसी वर्ग में रखा जाता है। दूसरा, ऐसी भाषाओं को जिनमें संबंध तत्व कहीं भी कहीं बीच में जुड़ता है उन्हें अंतर्मुखी श्लिष्ट कहा जाता है। इसमें अरबी हिब्रू को रखा जाता है। अंतर्मुखी बहुमुखी को पुनः दो वर्गों संयोगात्मक वियोगात्मक में भी बांटा जाता है। जैसे बहिमुखी में संस्कृत को संयोगात्मक, हिंदी को वियोगात्मक तथा अंतर्मुखी में अरबी को संयोगात्मक, हिब्रू को वियोगात्मक वर्ग में रखा जाता है। किंतु श्लिष्ट भाषा में अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उसके भी संयोगात्मक वियोगात्मक विभाजन को अनेक भाषा वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते। प्रश्लिष्ट युगात्मक भाषाएं। प्रश्लिष्ट युगात्मक युगात्मक वह भाषा है जिसमें रचना तत्व अर्थ तत्व से इस प्रकार चिपक जाता है कि एक दूसरे को पहचानना एवं अलग करना संभव नहीं रह जाता। वस्तुत इस वर्ग की भाषाओं में अनेक अर्थ तत्वों का थोड़ा थोड़ा अंश काटकर एक शब्द बन जाता है जो पूरे वाक्य का अर्थ देने लगता है। इसीलिए ऐसी भाषाओं को समास प्रधान भी कहा जाता है, क्योंकि समास के द्वारा एक से अधिक शब्द एक दूसरे से मिलकर एक नए भिन्न शब्द का निर्माण कर लेते हैं। संस्कृत के एक उदाहरण में यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जिगमिषति बराबर वह जानना चाहता है। इस एक शब्द में ही वह जाना चाहना, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन, इतने अर्थ विद्यमान हैं। इस तरह जिगमिषति एक शब्द होते हुए भी पूरे वाक्य का कार्य करता है तथा इसके रचना तत्व को अलग कर पाना भी संभव नहीं। इस प्रकार की प्रमुख भाषा एस्मिको का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। तकुर, यूतोर, उल, गलुअर, नेर्प आ। क्या तुम सोचते हो कि वह वस्तुत इसकी देख रेख करने को जाना चाहता है? तकुसर बराबर वह उसके साथ व्यस्त होता है। यूतोर बराबर वह आता है। उम बराबर वह चाहता है। गलुअर बराबर वह कैसा करता है। निर्प बराबर किंतु। आ बराबर क्या तुम सोचते हो। एक एक अवयव से जितना अर्थ व्यक्त होता है वह संक्षिप्त होकर एक अर्थ का वाचक हो जाता है। वाक्य के निम्नलिखित उदाहरणों से भी प्रश्लिष्टता झलकती है। द करलियोत बराबर मैं इसे उस तक ले जाता हूँ। नकारसु बराबर तू मुझे ले जाता है। हकार्त बराबर मैं तुझे ले जाता हूँ। संस्कृत के उपयुक्त उदाहरण के समान ही ये शब्द देखने में एक एक शब्द है पर कार्य करते हैं वाक्य का। आकृति मूलक वर्गीकरण के उपयुक्त चार भेद प्रमुख हैं। आवश्यकता अनुसार इसके और भी भेद उपभेद किए जा सकते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण की उपयोगिता। भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि भाषाओं के वर्गीकरण में इस आधार से सहायता कुछ अवश्य मिलती है पर पूर्णतः नहीं। जहाँ तक इस सिद्धांत की तत्विकता वैज्ञानिकता का सवाल है वह भी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि भाषा के अध्ययन में अब इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इस सिद्धांत में जो कमियां दृष्टिगोचर होती है वे क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला, आकृतिमूलक वर्गीकरण अत्यंत सूक्ष्म है। भाषाओं को एक दायरे में रखने की परिपाटी वह भी किसी एक लक्षण के आधार पर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भाषाओं में एक ही लक्षण नहीं बल्कि अनेकों गौण लक्षण हुआ करते हैं। जैसे तुर्की, कन्नड़, काफिर आदि भाषाएं अश्लिष्ट युगात्मक या प्रत्यय प्रधान भाषाएं हैं, किंतु यदि गौर से देखा जाए तो इनमें कहीं कहीं प्रश्लिष्ट या समास संयोगी होने के लक्षण भी मिल जाते हैं। यूरोप की बास्क और अफ्रीका की बाटू परिवार की भाषाएं प्रत्यय प्रधान हैं, तथापि उनमें विभक्ति संयोगी होने के भी लक्षण मिलते हैं। दूसरा, भाषाओं के विकास को देखने से यह विदित होता है कि अधिकांश भाषाएं जो पहले युगात्मक थी, कालांतर में वे अयुगात्मक हो गई हैं। संस्कृत और प्राकृति से विकसित हिंदी तथा अन्य लोक भाषाएं इसका ज्वलंत प्रमाण है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब भाषा की रूप रचना ही कालांतर में परिवर्तित होती रहती है तो भाषा को किसी एक निश्चित सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। आज यह सर्वमान्य ऐसा हो गया है कि अधिकांश भाषाओं का विकास धातुओं से हुआ है, पर आकृति मूलक वर्गीकरण से यह स्पष्ट रूप से कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि किसी भाषा में पहले कभी धातुओं का भी प्रयोग होता था। चौथा, आज भाषाओं के स्पष्ट क्रमिक विकास को देखने से यह ज्ञात हो गया है कि पहले प्रत्यय विभक्ति स्वतंत्र रूप से प्रचलित थी। जैसे हिंदी में विभक्ति पहले संस्कृत मध्य के रूप में, हिंदी का विभक्ति पहले संस्कृत कृत के रूप में, संस्कृत ती सी मी आदि प्रत्यय सर्वनामों के अंशों के रूप में, तथा अंग्रेजी में ली पहले लाइक के रूप में प्रचलित थी। इससे यही सिद्ध होता है कि भाषाओं में प्रश्लिष्ट से लिस्ट, फिर लिस्ट से श्लिष्ट से अश्लिष्ट और अंत में अश्लिष्ट अयुगात्मक अवस्था देखी जाती है। तात्पर्य यह कि भाषाओं का यह चक्र इसी प्रकार किसी न किसी रूप में चलता रहता है और ऐसी परिवर्तनशील भाषा को किसी एक सीमा में बाधा नहीं जा सकता है। आज आकृति मूलक वर्गीकरण इन्हीं सब कमियों के कारण अवैज्ञानिक सिद्ध होता जा रहा है और वह पारिवारिक वर्गीकरण की अपेक्षा महत्वहीन हो गया है। यह भी सत्य है कि 2-3-4 वर्गों या 20-25 उपवर्गों में बांटने से संसार की समस्त भाषाओं की वास्तविक आकृति का पता नहीं लग सकता। सुनो, जो मैं पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है अर्थतत्व एवं रचनातत्व की समानता। इस समानता का कारण भाषाओं के मध्य पाया जाने वाला ऐतिहासिक संबंध है। प्रत्येक भाषा एक विशेष मानव समुदाय द्वारा प्रयुक्त होती है। इस कारण स्वाभाविक यही है कि मानव समुदाय की भाषा का दूसरे मानव समुदाय की भाषा से कोई साम्य न हो, किंतु कई बार यह देखने को मिलता है कि भाषाएं एक दूसरे से बहुत अधिक सामान्य दिखाई देती हैं। इस समानता के कारण होते हैं आकस्मिक क आकस्मिक ख शिशु शब्दावली, ग अनुकरणात्मक शब्दावली, घ भावाभिव्यंजक शब्दावली, अंग भाषाई आगत और च समान उद्गम स्रोत। उपयुक्त समस्त समानताओं को अलग करने पर भी यदि प्रभावशाली समानता दिखाई पड़े और वह समानता कुछ सांस्कृतिक शब्दों तक ही सीमित न हो, उन भाषाओं की मूल शब्दावली के बहुत बड़े अंश के साथ साथ भाषाओं की व्याकरणात्मक एवं ध्वन्यात्मक रचनाओं में भी दृष्टिगोचर हो, तब ऐसी समानताओं से भिन्न भाषाओं के उत्पत्ति का स्रोत एक दूसरे स्रोत एक होने की संभावना बनती है और यही संभावना पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। परिवारों की रचना। भाषा मानव का प्रमुख व्यवहार है, फलस्वरूप मानव में होने वाले परिवर्तन से भाषा भी प्रभावित होती है। जिस प्रकार काल का एक मानव परिवार कालांतर में कई परिवारों गांवों नगरों में बैठकर पुराने परिवार में बिल्कुल अलग थलग अपनी पहचान बना लेता है, ठीक उसी तरह एक भाषा की विभिन्न बोलियां जो कल तक उसी भाषा की अंग रहती थी कालांतर में अपने उप रूपों को विकसित कर स्वतंत्र अस्तित्व धारण कर भाषा बन जाती है। यह बनने बिगड़ने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है और यही प्रक्रिया भाषिक परिवारों की रचना की त्रिमात्री है। भाषा वंश वृक्ष। भाषा परिवार की तुलना एक वृक्ष से की जा सकती है। जिस प्रकार किसी वृक्ष के एक तने से विभिन्न शाखाएं विकसित होकर भी एक होने का ही बोध कराती है, उसी प्रकार एक मूल भाषा से निष्पन्न अनेक भाषाएं परस्पर संबंध होती हैं। जिस तरह एक पूर्वज से उत्पन्न सभी मनुष्य एक गोत्र के माने जाते हैं, उसी एक भाषा से कालांतर में अनेक स्वगोत्र भाषाओं की उत्पत्ति होती है जो एक परिवार में रखी जाती है। उत्पत्ति या परिवार शब्द का प्रयोग लाक्षणिक होता है। उत्पत्ति का अर्थ सहसा आविर्भाव नहीं बल्कि क्रमिक विकास लिया जाना चाहिए। उत्पत्ति विकास एवं विनाश का क्रम सभी लौकिक वस्तुओं की तरह भाषा में भी चला करता है। किसी पूर्ववर्ती भाषा में नई भाषा उत्पन्न होकर विकसित होती है और अंततः विनष्ट हो जाती है। भाषा के विनष्ट या मृत होने का तात्पर्य प्रयोग में जीवित होना है। प्राकृतिक तालीन अपभ्रंश आदि इसके उदाहरण हैं जिनकी वंश परंपरा आज भी चल रही है। भाषाओं के माता पिता या भाई बहन नहीं होते। एक मूल में जब अनेक भाषाएं विकसित होती हैं तो उस मूल भाषा को जननी मान लिया जाता है। उस मूल भाषा से विकसित भाषाएं लौकिक संबंध के आधार पर बहने बन जाती हैं। संस्कृत लातिन जर्मन फारसी अंग्रेजी के बीच हजारों मील की दूरी है पर उनमें आश्चर्यजनक साम्य है। उदाहरण के लिए संस्कृत पितु मातु एवं भ्रातु क्रमशः तालीन में पतेर मतेर फंतेर मुतेर ब्रदेर हो जाता है। निश्चित ही इतना साम्य आकस्मिक या आकरण नहीं हो सकता। स्वभावतः प्रश्न उठता है कि परस्पर दूरस्थ भागों में बोली जाने वाली प्रयुक्त भाषाओं में इस असाधारण साम्य का कारण क्या है। तब यह कल्पना असंगत नहीं प्रतीत होती कि हो न हो ये एक ही मूल भाषा से विकसित हो। वह मूल रूप क्या था, इसका प्रसार इतनी दूर तक कैसे हुआ, उनमें उच्चारण संबंध परिवर्तन कैसे हुआ, इनमें भिन्नता एवं समानता के क्या कारण हैं, इन प्रश्नों का समाधान भाषा विज्ञान का विषय है। पर विभिन्नता के बीच की यह समानता ही पारिवारिक वर्गीकरण की आधार भूमि प्रस्तुत करती है और हमारी इस धारणा को स्पष्ट करती है कि ये शब्द किसी एक मूल भाषा के शब्द से निकले हैं। अंततः ये शब्द जिन भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं वे एक परिवार का है। पारिवारिक वर्गीकरण के सिद्धांत। पारिवारिक वर्गीकरण की परिकल्पना में सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है उन आधारों एवं सिद्धांतों का निर्धारण जिसके आधार पर परस्पर संबंध भाषाओं को एक परिवार या परिवार तथा असंबंध भाषाओं को दूसरे परिवार में रखा जाता है। पारिवारिक परिकल्पना पारिवारिक वर्गीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहली परिकल्पना यह है कि वर्गीकरण के लिए जिन भाषाओं का परीक्षण किया जा रहा है वे परस्पर संबंध हो सकती हैं। इनकी परस्पर संबंध के निम्नलिखित कारण होते हैं जो परिवार निर्धारण में सहायता देते हैं। क, स्थानीय समीपता। ख, मूल शब्दावली में समानता। ग, अर्थ की समानता। घ, व्याकरणात्मक समानता। अंग, ध्वनात्मक समानता। स्थानीय समीपता का तात्पर्य है भौगोलिक दृष्टि से समीपता। पारिवारिक वर्गीकरण की परिकल्पना का पहला आधार स्थानीय समीपता है। इस आधार पर हम भौगोलिक दृष्टि से निकट दो भाषाओं को एक परिवार की मानकर उनका परीक्षण करते हैं। यह धारणा कभी सही निकलती है और कभी गलत। तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि भौगोलिक दृष्टि से निकट की दो भाषाएं एक ही परिवार की हो तथा भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ दो भाषाएं अलग परिवार की हो। उदाहरण के लिए भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ महाराष्ट्र की मराठी एवं मंसूर की कन्नड़ दो परिवारों की भाषाएं हैं। पहली भारूपीय परिवार की, दूसरी द्रविड़ परिवार की। दूसरी तरफ भौगोलिक दृष्टि से दूर अंग्रेजी, जर्मन, रूसी एवं हिंदी एक ही परिवार की भाषाएं हैं। अतः स्थान की समीपता की केवल इतनी ही उपयोगिता है कि इसमें परीक्षण हेतु भाषाओं के चुनाव में सुविधा होती है। ख, मूल शब्दावली में समानता। सामान्य पदार्थ सूर्य, चंद्र, आकाश, धरती आदि। खाने पीने की सामान्य वस्तुएं, मुख्य अनाज, सब्जी आदि। मुख्य रंग लाल, काला, सफेद आदि। सामान्य पशु पक्षी, घोड़ा, गाय, चिड़िया आदि। दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री, मकान, कपड़ा आदि के नाम वाले शब्द। 10 तक की संख्याएं, मुख्य क्रियाएं, सर्वनाम आदि शब्द मूल शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। मूल शब्दावली अन्य भाषाओं के शब्दों से या तो मुक्त रहती है अथवा बहुत ही कम प्रभावित होती है। और जब दो या दो से अधिक भाषाओं में इन मूल शब्दों में प्रभावशाली समानता दिखाई देती है तब भाषाओं के परस्पर संबंधित होने की परिकल्पना को पुष्टि मिलती है। मूल शब्दावली के परीक्षण के लिए सर्वप्रथम परीक्षार्थ ली गई भाषाओं की मूल शब्दावली का सूचिया तैयार करनी चाहिए। फिर उन सूचियों की तुलना करते हुए समाज, उच्चारण, अर्थ की समानता रखने वाले शब्दों का चयन करना चाहिए। फिर उन समाज शब्दों में प्रयुक्त अनुरूप ध्वनियों की तुलना करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अनुरूप ध्वनियों में नियमित संबंध है अथवा नहीं। यदि भाषाएं संबंधित उपयोगी तो उनकी मूल्य शब्दावलियों में बहुसंख्यक सजात शब्द होंगे तथा उनकी ध्वनियों के परिवर्तन में नियमित संबंध दिखाई देगा। ग, अर्थ की समानता। अर्थ परिवर्तन भाषा की सहज विशेषता है। जिस प्रकार भाषा के अन्य अंगों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार भाषा के अर्थ में निरंतर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक ही मूल के अनेक शब्द विभिन्न परिवेश में पढ़ने के कारण भिन्न भिन्न अर्थ देने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अनेक ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनमें अर्थगत समानता होती है। यह आकस्मिक भी हो सकता है और एक मूलक से विकसित होने के कारण भी। इसलिए समान अर्थ के शब्दों से युक्त दो या अधिक भाषाओं के एक परिवार से विकसित होने की परिकल्पना।
व्याकरणात्मक समानता। भाषा परिवर्तन का प्रभाव जितना शब्दावली एवं अर्थ पर पड़ता है उतना भाषा की व्याकरणात्मक संरचना पर नहीं। इसलिए मूल शब्दावली एवं अर्थ में प्रभावशाली समानता दृष्टिगत होने पर हमें व्याकरणात्मक संरचना की सतर्क जांच करनी चाहिए। भाषाओं में संपर्क स्थापित होने पर आदान प्रदान अवश्य होता है, किंतु यह शब्दावली तक ही सीमित रहता है। यदि संपर्क में आई भाषा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होगा भी तो वह अत्यंत अल्प। हिंदी में अनेक अंग्रेजी एवं अरबी फारसी के शब्द आ गए हैं, किंतु हिंदी के व्याकरणात्मक ढांचे पर इस भाषाई आदान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उदाहरण के लिए, ऑफिस का बहुवचन अंग्रेजी में ऑफिसेज होता है, किंतु हिंदी में गृहित होकर यह ऑफिसो हो जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्द ट्रेन बस है, जिनका बहुवचन रूप ट्रेन्स बसेज न होकर ट्रेनें बसे होता है। फारसी का खबर हिंदी में प्रयुक्त होता है, किंतु हिंदी में इसका बहुवचन रूप खबरें होता है, जबकि फारसी में अखबार। हिंदी में अखबार शब्द समाचार पत्रों के लिए प्रयुक्त होता है। अतः दो भाषाओं में व्याकरणात्मक समानता तभी संभव है जब वे एक स्रोत से विकसित हों। यदि भाषाएं संबंधित होगी तो उनकी संपूर्णता व्याकरणात्मक संरचना में समानता दिखाई देगी। यह समानता शब्द निर्माण की पद्धति, शब्द विकार एवं वाक्य रचना पद्धति में दिखाई देती है। शब्द निर्माण पद्धति मूल शब्द में उपसर्ग, परसर्ग आदि लगाकर विभिन्न शब्द बनाने की प्रक्रिया है, तथा यथा कर धातु से कर्ता, कर्म करना, क्रियाकारक, कृत आदि शब्द बने हैं। शब्दों में विभक्ति प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय आदि लगाकर वाक्यों में प्रयुक्त होने योग्य बनने की पद्धति शब्द विकार कहलाती है, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, तुम का, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, खा का, खाना, खाएं, खाओ, खाऊं आदि। शब्दों को वाक्य में नियत स्थान पर रखने, उन्हें परस्पर संबंध करने की विधि वाक्य रचना पद्धति कहलाती है। व्याकरणात्मक अपवाद व्याकरणिक समानता को और अधिक पुष्ट करते हुए, जैसे हिंदी में जाना क्रिया के वर्तमान और भविष्यकालिक रूप जा धातु से बनते हैं, यथा जाना, जाता, जाएगा, जाएंगे, जाऊंगा, किंतु भूतकाल में अपवाद स्वरूप ग का प्रयोग होता है, यथा गया, गए आदि। मराठी हिंदी के ही परिवार की एक भाषा है। उस पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें भी वर्तमान एवं भविष्यत काल के रूप जा से ही बनते हैं, जाने, जातो आदि, किंतु भूतकाल के रूप ग से ही आरंभ होते हैं, गेला, गेलिया आदि। वस्तुतः भाषाओं में अपवाद तभी संभव होते हैं जबकि उनके व्याकरणात्मक संरचनाओं में प्रभावशाली समानता हो। ध्वन्यात्मक अंग ध्वन्यात्मक समानता भाषाओं में परिवार निर्धारण में अंतिम एवं निर्णायक आधार ध्वन्यात्मक समानता है। ऐसा देखा जाता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से विलग एक दूसरे से दूर पड़ी एक परिवार की भाषाओं के अर्थ एवं व्याकरणिक संरचना में अंतर पड़ जाता है, किंतु उनमें ध्वन्यात्मक समानता मिलती है। उदाहरण के लिए हम हिंदी एवं अंग्रेजी को ले सकते हैं। शब्दों में अर्थ की भिन्नता के साथ साथ व्याकरणात्मक संरचना के ढांचे में परिवर्तन आ गया है, जबकि दोनों एक ही परिवार की भाषाएँ हैं। इसलिए भाषाओं के संबंध निर्णय के व्याकरणात्मक तुलना के पश्चात ध्वन्यात्मक संरचनाओं की तुलना आवश्यक होती है। यदि अन्य समानताओं के साथ साथ ध्वन्यात्मक समानता भी दिखाई दे तो यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि वे एक दूसरे से संबद्ध है, अर्थात एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हैं और इसका कारण होती हैं। यदि अन्य समानताओं के साथ साथ ध्वन्यात्मक समानता भी दिखाई दे तो यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि वे एक दूसरे से संबद्ध है, अर्थात एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है और इस कारण एक ही परिवार की है। ध्वन्यात्मक समानता का तात्पर्य यह नहीं कि परिचित भाषाओं में ध्वनियाँ एक जैसी हैं। समानता में एक रूपता में बड़ा अंतर होता है। एक रूपता दो स्थितियों में संभव है। पहली, परिचित भाषा एक ही भाषा के विभिन्न बोली हो। दूसरी, परिचित भाषा में ध्वनियों का आदान प्रदान हो गया हो। यह स्थिति आगम की है और भाषाई आगम के कारण उत्पन्न समानता पारिवारिक वर्गीकरण के लिए उपयुक्त नहीं। इसलिए भाषाई आगम से आई सामग्री को अलग करने के पश्चात ही वर्गीकरण के लिए चुनी गई भाषाओं की तुलना की जाती है। बाह्य रूप से पंजाबी और हिंदी की ध्वनियाँ में असमानता दिखाई देती है, क्योंकि हिंदी जैसी घोष, महाप्राण, स्पर्श, घ, झ, ढ, ध, भ ध्वनियाँ पंजाबी भाषा में नहीं है। इसके स्थान पर पंजाबी में तान महत्वपूर्ण है, किंतु इस तान का प्रयोग अघोष, अल्प प्राण स्पर्श ध्वनिया क, च, ट, त, प के साथ हो सकता है। इस कारण जहाँ हिंदी में क, घ ध्वनियां परस्पर व्यतिरेक या विरोधात्मक है, यथा कोड़ा घोड़ा एक विशेष प्राणी है, वही पंजाबी में भी कह क ध्वनियां परस्पर व्यतिरेकी या विरोधात्मक का संबंध रखती है, तथा खोड़ा एम को उड़ा का एक विशेष प्राणी है। इस प्रकार पंजाबी एवं हिंदी ध्वनियां की तुलना करने पर उनमें समानता दिखाई देती है, दोनों में नियमित संबंध है। संसार के भाषा परिवार। पिछले परिच्छेदों में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भाषाओं की संरचनात्मक समानता के आधार पर संसार की समस्त भाषाओं को अलग अलग परिवारों में विभाजित किया गया है, किंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं समझना चाहिए कि यह वर्गीकरण अंतिम एवं पूर्ण है तथा समस्त भाषाओं का स्पष्ट वर्गीकरण हो चुका है। वस्तुतः आज भी संसार में अनेक ऐसी भाषाएं उपेक्षित पड़ी हैं जिनका अभी तक वैज्ञानिक एवं संतोषजनक अध्ययन नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं कि संसार की भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण को पूर्ण एवं अंतिम माना जाए। इसके अतिरिक्त परिवारों की संख्या निर्धारण पर भी मतभेद है। रे जैसे विद्वान संसार की समस्त भाषाओं को एक भाषा एवं एक परिवार से विकसित मानते हैं, तो फ्रेडरिक मूलर जैसे विद्वान भाषा परिवारों की संख्या 100 के आसपास स्वीकार करते हैं। 10, 13, 18 परिवार मानने वाले विद्वान अधिक हैं। संसार की भाषाओं के परिवार के चार उपखंडों में विभाजित कर इस प्रकार दिखाया जा सकता है। भार उपयोग परिवार। पहला महत्व, भारूपीय परिवार जिसे आज कुछ विद्वान भारत हिटाइट कहना अधिक पसंद करते हैं, संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार है। यह परिवार कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह परिवार संसार के बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और हर कोने में इस परिवार की भाषा बोली जाती है, फलस्वरूप इसके प्रयोक्ताओं की संख्या अधिक है। दूसरा, साहित्यिक दृष्टि से जितना प्राचीन जितना विविध और जितना उत्कृष्ट साहित्य भारत यूपीय परिवार का है उतना और किसी भाषा परिवार का नहीं है। तीसरा, सभ्यता और लैटिन ग्रीक संस्कृत जैसी साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषाएं इसी परिवार की हैं। तीसरा, सभ्यता और संस्कृति के दृष्टि से भी इस परिवार के भाषा भाषी अन्य भाषा भाषियों से आगे हैं। चौथा, इस परिवार की अंग्रेजी जर्मन फ्रांसीसी एवं रूसी भाषाओं में विद्यमान वैज्ञानिक साहित्य भी अप्रतिम है। विगत शताब्दियों में विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है वह इसी परिवार की भाषाओं द्वारा हुई है। पाँचवा, और राजनीतिक प्रभुत्व और उपनिवेशवादी व्यवस्था के चलते इस परिवार की कई भाषाएँ अपने क्षेत्र से निकल कर दूसरे क्षेत्रों में फैली। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परिवार की भाषाओं का जितना अधिक अध्ययन हुआ है उतना किसी अन्य परिवार की भाषाओं का नहीं। सही बात तो यह है कि भाषा विज्ञान का आरंभ भी इस परिवार की भाषाओं के अध्ययन से हुआ। सन 1886 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख सर विलियम जोन्स ने पहली बार ग्रीक और लैटिन से संस्कृत के घनिष्ठ संबंध की घोषणा की थी, और उसी समय उन्होंने इन तीनों की एक मूल भाषा से विकसित होने की अवधारणा प्रस्तुत की थी। विलियम जोन्स की इस भाषा से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ होता है। अतः जनसंख्या, व्यापकता, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, वैज्ञानिक प्रगति, राजनीतिक एवं भाषा वैज्ञानिक आदि सभी दृष्टियों से भारत यूरोपीय परिवार संसार की भाषाओं में सर्वोच्च स्थान का अधिकारी ठहरता है। ख, नाम की समस्या। इस परिवार की भाषा पर अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने कार्य किया, इसलिए उन्होंने इसके कई नाम सुझाए। यथा जर्मन भाषा वैज्ञानिकों ने इंडो जर्मनिक, तो दूसरों ने आर्य नाम दिया। इनमें पहले का आधार भौगोलिक और दूसरे का जाति विशेष था। दोनों नाम इस परिवार की सभी भाषाओं को इंगित नहीं कर पाते थे। फिर सेमेटिक हेमेटिक के समान जफेटिक नाम सुझाया गया, यह भी लोकप्रिय नहीं हुआ। भारूपीय नाम भी अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से युक्त है, पर यह नाम सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ और आज भी इसी नाम से इस परिवार की भाषाएं इंगित होती हैं, पर यह नाम भी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। इस वर्ग की भाषाएं न तो पूरे भारत में बोली जाती है और न ही पूरे यूरोप में। दूसरी तरफ इन दोनों क्षेत्रों के बाहर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी ये भाषाएँ बोली जाती हैं। तो खारी इसी परिवार की भाषा है, पर इस सीमा से परे तुर्किस्तान में बोली जाती है। कुछ विद्वान इस परिवार का नाम भारत हिती इंडो हिताइत स्वीकार करते हैं। इस नाम के नामकरण का प्रश्न तब उठा जब सन 1893 ईस्वी में एशिया माइनर के बोगा जकोई नामक स्थान पर की पुरातात्विक खुदाई के प्रसंग में कुछ किलाक्षर मिले। इन्हें पढ़कर चेक विद्वान वेजनी ने इसे हिताइत भाषा की संज्ञा दी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि हिताइत भारोपीय भाषा की परिवर्ती विकसित भाषा न होकर उसकी समकालीन थी। इस कारण उसे भारोपीय भाषा की एक शाखा नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर इन विद्वानों ने भारत हिति नाम स्वीकार किया। यह नाम भी नामकरण की समस्या के सुलझाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भारत और हिति नाम क्रमशः देश नाम और जाति को बोधक है। इस प्रकार इस नाम को स्वीकार करने से एक रूपता नहीं दृष्टिगोचर होती। इस नाम से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि इस भाषा का विस्तार कहाँ तक है। यद्यपि आज के विद्वान भारत हिति नाम को अधिक सार्थक मानते हैं, किंतु भारोपीय नाम की लोकप्रियता को यह नाम अभी तक नहीं पा सका है। इस प्रकार उपयुक्त नामों पर जब हम एक सरसरी दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि इन सभी नामों में भारत यूरोपीय नाम ही अधिक तर्कसंगत है। ग, मूल भारोपीय भाषा एवं उसका क्षेत्र। मूल भारोपीय भाषा अथवा भारत हिति की लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीनतम रूप के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा मूल भारोपीय भाषा की पुनर्संरचना का प्रयास किया गया है। इस कल्पित पुनर्संरचित भाषा को ही भाषा वैज्ञानिकों ने मूल भारोपीय भाषा कहा है, किंतु संस्कृत, ग्रीक एवं लैटिन को देखने से यह लगता है कि यह किसी भाषा के विभिन्न रूपों से विकसित है, न कि उस भाषा से सीधे। भारोपीय भाषा के मूल स्थान के संबंध में भी उसके नाम की तरह ही विवाद है। भारोपीय विद्वान उसका मूल स्थान भारत मानते हैं, यूरोपीय विद्वान यूरोप का कोई क्षेत्र, एशियाई विद्वान एशिया का कोई स्थान। लोकमान्य तिलक इसके मूल स्थान को उत्तरी ध्रुव के निकट स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान मध्य एशिया में यूराल अल्ताई पर्वत के निकटवर्ती मैदान को इसका मूल स्थान स्वीकार करते हैं, किंतु इन सभी मान्यताओं में तर्क का अभाव है, भावना की प्रधानता। मेरी अपनी दृष्टि से प्राचीन आर्यवर्त ही इस भाषा का मूल स्थान रहा है। दूसरा, व्याकरणात्मक संरचना। मूल भारोपीय भाषा की कतिपय प्रमुख व्याकरणात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारोपीय भाषा श्लिष्ट एवं प्रश्लिष्ट यगात्मक के मध्य की थी, जिसमें अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व परस्पर घुले मिले रहते थे। दूसरा, प्रत्ययों की बहुलता थी। धातु में प्रत्यय जोड़कर पद रचना की जाती थी। पद रचना जटिल थी, मुख्यतः धातुओं से शब्द निष्पन्न होते थे। तीसरा, व्याकरणात्मक शब्द संज्ञा, क्रिया एवं अव्यय अलग अलग थे, किंतु सर्वनाम एवं विशेषण संज्ञा के ही अंश थे। सर्वनामों में विविधता थी। चौथा, शब्द रूपों में तीनों पुरुष प्रथम, मध्यम, उत्तम, तीन लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एवं संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थी। संभवतः इसी आधार पर संस्कृत में आठ कारकों का प्रयोग हुआ। पाँचवा, शब्द की सामासिक रचना भी होती थी, जो इस भाषा की अन्यतम विशेषता थी। छठा, क्रिया के चार काल एवं पांच भाव थे। क्रिया में काल की अपेक्षा कार्य की पूर्णता, अपूर्णता की स्थिति का महत्व था। सातवां, क्रियाएं दो प्रकार की थी, आत्मनेपद्य एवं परस्मैपद्य। आठवां, व्याकरणात्मक संरचना में स्वरों एवं स्वरघात का महत्व था, साथ ही शब्द के मध्य में स्वर परिवर्तन रचनात्मक महत्व रखता था। नौवां, अनेक रूपों में धातु का अभ्यास द्वितीय हो जाया करता था, जैसे पठ एवं नद के प्रथम व्यंजन का द्वितीय होने पर पपाठ, ननाद। दसवां, स्वराघात प्रक्रिया इसकी प्रमुख विशेषता है। ग्रीक तथा वैदिक संस्कृति में भारोपीय के स्वराघात ठीक रूप से मिलते हैं। आगे चलकर सुर के साथ स्वराघात का प्राबल्य हो जाता है तथा सोन्ति, सम, संति, ग्रीक एंति, लय, सुंत। अंग, भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की समस्त भाषा यद्यपि एक दूसरे से परस्पर संबद्ध है, पर कुछ में अधिक निकटता है। इस निकटता और दूरी को ही लक्ष्य में रखकर एक परिवार को पुनः विभिन्न समुदायों एवं उपपरिवारों में विभाजित किया जाता है। इन भाषाओं की ध्वनियों की तुलना के पश्चात सन 1870 ईस्वी में अस्कोली नामक भाषा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मूल भारोपीय भाषा की कंठ ध्वनियाँ कुछ शाखाओं में कंठ, क, ख आदि रह गई हैं तथा कुछ में संघर्षी श, स, श, ज हो गई हैं। उदाहरण के लिए मूल भारोपीय भाषा का शब्द दक ग्रीक में दक है, किंतु संस्कृत में दर्श। इस प्रवृत्ति की प्रतिनिधि भाषा के रूप में उसने लातिन और अवेस्ता को लिया और सौ के वाचक शब्दों की सहायता से अपने निष्कर्ष को प्रमाणित किया। लातिन में सौ को केंतुम कहते हैं और अवेस्ता में सतम, इसलिए उन्होंने केंतुम और सप्तम वर्ग में समस्त भारोपीय भाषाओं का विभाजन किया। केंतुम वर्ग में उन परिवारों को रखा जिनमें कंठ ध्वनियां विद्यमान हैं तथा सप्तम में उन परिवारों को रखा जिनमें कंठ ध्वनि संघर्षी बन गई है। भारोपीय परिवार की भाषाओं को केंतुम एवं सप्तम के आधार पर भारत यूरोपीय परिवार की विशेषताएं। पहला यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। दूसरा शब्दों की रचना उपसर्ग धातु और प्रत्यय के योग से होती है। उपसर्ग प्रारंभ में स्वतंत्र सार्थक शब्द थे। तीसरा वाक्य रचना पदों से होती है, विभक्ति से संयुक्त होकर पद बनते हैं। चौथा समास बनाने की प्रवृत्ति की प्रधानता थी, संस्कृत इसका उदाहरण है। पांचवा स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है, स्वर परिवर्तन यदा शब्द रचना का अंग है। छठा इस परिवार में प्रत्ययों का बाहुल्य है। भारतीय उपपरिवार संक्षिप्त परिचय। पहला ग्रीक हेलेनिक उपपरिवार। ग्रीक गेंतुम समुदाय की सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध भाषा रही है। ग्रीक की संस्कृति का वहाँ का साहित्य बहुत पुराना है। ग्रीक के प्रसिद्ध कवि होमर ने ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इलियड एवं ओडेसी नामक महाकाव्यों की रचना की थी। यूरोप के साहित्य एवं संस्कृति पर ग्रीक के साहित्य का तथा संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव है। ग्रीक वर्णमाला से ही समस्त यूरोप की लिपियों का विकास हुआ है। प्लेटो अरस्तु जैसे महान विचारक एवं सिकंदर जैसे विश्व विजेता ग्रीक में ही पैदा हुए। ग्रीक भाषा इजियन द्वीप समूह, दक्षिणी अल्बानिया एवं यूगोस्लाविया, दक्षिणी पश्चिमी बुल्गारिया, तुर्की के कुछ भाग, साइप्रस और कीट द्वीप में बोली जाती है। इसमें अनेक बोलियां थी जिनमें अतिरिक्त दोरिक, योनी और आयोलोली प्रमुख थी। इनमें पर्याप्त भेद था। सामान्य भाषा के रूप में कोइने प्रचलित थी जो आतिक और दोरिक पर आधारित थी। होमर के दोनों महाकाव्यों में भी विभिन्न बोलियों के रूप में दिखाई देते हैं। विशेषताएँ प्राचीन एवं आधुनिक ग्रीक में अत्यल्प भेद है। दूसरा संस्कृत की भांति ग्रीक में संगीतात्मक और मूल भारोपीय भाषा की विशेषताएं सुरक्षित है। तीसरा कर्ता कर्म संप्रादन एवं संबंधन इसके कारक हैं। चौथा ग्रीक में अवयवों उपसर्गों एवं क्रिया विशेषणों का बाहुल्य है। पांचवा ग्रीक में भी दोनों पदों परस्मै पद एवं आत्मनय पद की क्रियाएँ पाई जाती हैं। सातवा ग्रीक में समास है किंतु संस्कृत की भांति लंबे नहीं। आठवा ग्रीक में तीन लिंग पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग एवं दो वचन एक वचन एवं बहुवचन है। दूसरा इटालिक रोमांस। इटालिक उपपरिवार को लैटिन उपपरिवार भी कहते हैं क्योंकि इस परिवार की सबसे अधिक प्रसिद्ध भाषा लैटिन है। यह रोमन कैथोलिक संप्रदाय की धर्म भाषा एवं यूरोप की सांस्कृतिक भाषा है। यूरोप में इसका वही स्थान है जो भारत में संस्कृत का। 500 ईसा पूर्व के आसपास में इटालिक के शिलालेख मिलने लगते हैं। प्राचीन लैटिन मध्ययुग में विकसित होकर यह संपूर्ण रोमन साम्राज्य की राजभाषा बन गई। इसी मध्यकालीन लैटिन से आधुनिक लैटिन का विकास हुआ। इस उपपरिवार के प्राचीन भाषा ओस्कन एवं आम्ब्रियान का परवर्ती विकास नहीं मिलता। इस क्षेत्र में प्रचलित बोली रूपों में लैटिन के अतिरिक्त चार और भाषाओं का विकास हुआ। ये है फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली एवं रोमानी। इटालिक भाषाओं का अंतर रचनात्मक से अधिक ध्वनियात्मक है। लिखित रूप से पुर्तगाली, स्पेनी और इटालिक बहुत कुछ परस्पर बोधगम्य हैं। इनमें से किसी एक भाषा का जानकार दूसरी भाषा को पढ़कर बहुत कुछ समझ सकता है, परंतु ध्वनियात्मक भेद की दृष्टि से फ्रांसीसी अत्यधिक भिन्न है। ध्वनि की दृष्टि से इसे एक अलग ही श्रेणी में रखा जा सकता है। रोमानी संरचनात्मक दृष्टि से भिन्न है। साहित्यिक दृष्टि से फ्रांसीसी, इटालिक, स्पेनी और पुर्तगाली संपन्न भाषाएं हैं। फ्रांसीसी तो 20वीं सदी के प्रथम चरण तक इस क्षेत्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक भाषा रही है। उपनिवेश विस्तार के कारण इटालिक वर्गीय भाषाओं का फैलाव कनाडा, मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका में भी है। लातिन से उत्पन्न भाषाएं बोली जाने के कारण ही दक्षिणी अमेरिका को लातिन अमेरिका कहा जाता है। विशेषताएँ पहला लातिन वर्ग की सभी भाषाएं योगात्मक से अयोगात्मक की ओर उन्मुख है। दूसरा लातिन में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता था तथा इन भाषाओं में उपसर्गों या निपातों से विभक्तियों का कार्य लिया जाता है। तीसरा लातिन में तीन लिंग थे किंतु अब इनमें केवल दो लिंग है, पुलिंग एवं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग संज्ञा या तो पुलिंग में प्रयुक्त होती है या स्त्रीलिंग में। चौथा वचन दो हैं, एक वचन और द्विवचन। पांचवा विशेषण के लिंग और वचन संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार चलते हैं। छठा कालों रूपों के बाहुल्य के कारण क्रिया रूपों की रचना अधिक जटिल हो गई है। सातवा एक स्रोत से विकसित होने के कारण रोमन भाषाओं के शब्द भंडार तथा वाक्य रचना में एकरूपता है। आठवा लातिन के निश्चय वाचक सर्वनाम इल्ले से विभिन्न रूपों में विकसित आर्टिकल का प्रयोग इन सभी भाषाओं में होता है। अंतर केवल यह है कि इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली में इसका प्रयोग संज्ञा के पहले और रोमानी में संज्ञा के बाद होता है। नौवा अयोगात्मक होने से वाक्य में पद का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है।